खुदावन की तमजीद हो, खुदावन का शुक्र हो। आज के हमारे पैगाम का टाइटल है वफादारी से खुदावन के साथ चलना, वफादारी से खुदावन के साथ चलना। आज हम सब मिलकर दुआ करेंगे और उसके बाद पैगाम का आगाज़ करेंगे। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावन, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आपकी तमाम दी हुई बरकतों के लिए और आपकी तमाम दी हुई नेमतों के लिए। खुदावन, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए। हम आपका शुक्र अदा करते हैं आपके कलाम के लिए जो आज आप हमें देने वाले हो। खुदावन, हम आपसे ये दुआ मांगते हैं कि आज जब हम आपका कलाम सुनें तो आप हमारे दिलों को और जहनों को खोलें, ताकि जब हम आपके कलाम को सुनें तो हम उसे समझें, उसे कबूल करें और उस पर अमल करें, ताकि आपके नाम को जलाल मिले और इस कलाम पर अमल करके हम ढेर सारा फल लाएं और आपके नाम को जलाल देने वाले बने। आप हम सबके साथ होइए और हमें बरकत दीजिए। ये दुआ हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के हमारे पैगाम का टाइटल है वफादारी से खुदावन के साथ चलना। खुदावन यीशु की सलीब पर मौत की वजह से हम सबके लिए एक रास्ता खुल गया है कि हम खुदा तक पहुंच सके। खुदावन यीशु ने हम सबके लिए सलीब पर अपनी जान दी। खुदावन यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर हम सबके गुनाहों की कीमत अदा कर दी। खुदावन यीशु ने हमारी जगह पर अपनी जान दी ताकि हमें हमेशा की मौत का सामना ना करना पड़े। हम खुदावन यीशु के खून से पाक साफ हुए हैं और हमारे तमाम गुनाह खुदावन यीशु के खून से धुल गए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हालांकि खुदावन यीशु का खून हम सबके लिए मुफ्त है, फिर भी वो खून हमें ये हक नहीं देता कि हम खुदा के फजल का नजायज फ़ायदा उठाएं और गुनाह करते रहें। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे रोमियो उसका 6:1-2। रोमियो 6:1-2 में लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें? आमीन। खुदावन का फजल और खुदावन यीशु का वो काम जो उन्होंने हमारी नजात के लिए सलीब पर किया, हमें ये हक नहीं देता कि हम गुनाह करते रहें और अपनी ज़िंदगियां खुदा के दुश्मन बनकर गुजारते रहें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि खुदावन बहुत अच्छे हैं, खुदावन रहीम हैं, खुदावन माफ़ करने वाले खुदा हैं। हाँ, ये सब सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हक मिल जाता है कि हम गुनाह करते रहें। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि एक दफ़ा जब खुदावन हमें निजात दे देते हैं तो उसके बाद हमेशा के लिए हम बच जाते हैं, फिर मायने नहीं रखता कि हम अपनी ज़िंदगियां किस तरह से गुजार रहे हैं या किस तरह से गुजारते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। ये हवाला जो हमने सबसे पहले पढ़ा वो हमें बताता है कि एक दफ़ा जब हम खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ जान जाते हैं और उसके बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो ये कितनी ख़तरनाक बात है। उसके बाद गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रहती। अगर हमारी ज़िंदगी में सच्ची तौबा नहीं है तो खुदावन यीशु का खून हमारे गुनाहों को नहीं ढकेगा। अगर हम अपनी ज़िंदगियां गुनाह में गुजार रहे हैं तो खुदावन यीशु का खून हमारे गुनाहों को नहीं ढकेगा। गुनाह में ज़िंदगी गुजारने का मतलब है कि हम खुदावन के खिलाफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे काम, ऐसी आदतें जो हमें पता है कि गलत हैं, फिर भी हम उन्हें करते हैं। ऐसा बर्ताव जो हमें पता है कि ये बर्ताव गलत है, फिर भी हम उसी तरह से बर्ताव करते हैं। ऐसा रवैये रखना जो हमें पता है कि ये रवैया गलत है, फिर भी हम वैसे ही रवैया रखते हैं। ऐसे रीति रिवाज जो हमें पता है कि गलत है, फिर भी हम उन रीति रिवाजों को बदलते नहीं हैं, बल्कि उन रीति रिवाजों को अपनी ज़िंदगियों में रखते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, बदगोही करना, चुगलियाँ करना, गलत चीज़ें देखना, हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें गलत हैं, लेकिन फिर भी हम ये करते हैं। हम ये सब कुछ बंद करने के लिए राज़ी नहीं हैं, हम ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए राज़ी नहीं हैं। जब हम सही करना जानते हैं, जब हमें पता है कि सही क्या है और अगर हम नहीं करते तो ये हमारे लिए गुनाह है, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यकूब उसका 4:17। यकूब उसका 4:17। खुदा उनके कलाम में लिखा है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। आमीन। एक बहुत अहम फ़ायदा खुदा के घर आने का और खुदा के लोगों के साथ मेल मिलाप रखने का वो ये है कि हम उनके साथ खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं और फिर खुदावन के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सकते हैं। खुदावन का कलाम हमें दिखाएगा कि गुनाह क्या है। खुदावन का कलाम हमें सिखाएगा कि गुनाह क्या है, हमें दिखाएगा कि गुनाह क्या है, और खुदा का रूह हमें तौबा करने के लिए कन्विक्ट करेगा और हमें सही दिशा दिखाएगा। और हमारा मेल मिलाप खुदावन के लोगों के साथ हमेशा हमें ये याद दिलाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है और गुनाह क्या है। हमारे खुदावन यीशु ने लूका की अंजील उसके 12:47 में कहा, हम देखेंगे कि खुदावन ने लूका की अंजील उसके 12:47 में क्या कहा। और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। आमीन। तो ये मायने नहीं रखता कि हम कितना खुदा के कलाम में से जानते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि हम कितना खुदा के कलाम पर अमल करते हैं या हम कितना खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए राजी हैं। हम देखेंगे रोमियो उसका 2:13। रोमियो उसका 2:13। और लिखा है, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। आमीन। तो वो लोग जो खुदा के फ़ज़ल को जानते हैं, खुदा को जानते हैं, खुदा के कलाम को जानते हैं और फिर भी गुनाह करते रहते हैं, उनके लिए क्या बाकी रह गया। हम दोबारा से खुदा के कलाम में से देखेंगे इब्रानियों उसका 10:26-27। इब्रानियों उसका 10:26-27 में लिखा है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतश बाकी है जो मुखालिफों को खा जाएगी। आमीन। तो वो लोग जो लोग खुदा को जानते हैं, खुदा के कलाम को जानते हैं, खुदा के फ़ज़ल को जानते हैं और फिर भी गुनाह करते रहते हैं, तो उनके लिए अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतश बाकी है जो मुखालिफों को खा जाएगी। अब हम 28 पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 10:28। जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बग़ैर रहम किए मारा जाता है। आमीन। पुराने आयदनामे में मूसा के वक्त कोई भी शख्स जो मूसा की शरीयत को नहीं मानता था या मूसा की शरीयत पर अमल नहीं करता था, वो 2 या 3 शख्सों की गवाही से बग़ैर रहम किए मारा जाता था, और वो लोग उसे तब तक पत्थरों से मारते थे जब तक कि वो मर ना जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब ये फ़ज़ल का दौर है, खुदावन यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने सलीब पर हम सबके लिए अपनी जान दी, हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, इसीलिए अब हमें ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी या अब हमें सज़ा नहीं मिलेगी जिस तरह मूसा या फिर पुराने आयदनामे में मिला करती थी। लेकिन यहाँ पे 29 में बहुत वाज़े तौर पर लिखा है, हम देखेंगे कि 29 में क्या लिखा है। तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज़्यादा सज़ा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। आमीन। तो यहाँ पे 29 में बहुत वाज़े तौर पर लिखा है कि पुराने आयदनामे के वक्तों से भी ज़्यादा अब वो लोगों को सज़ा मिलेगी जो गुनाह करते रहते हैं। पुराने आयदनामे से भी ज़्यादा अब उन लोगों को सज़ा मिलेगी जो गुनाह करते रहते हैं या फिर अपनी ज़िंदगियां गुनाह में गुजारते हैं। क्योंकि खुदावन हमारी क्योंकि हमारी निजात खुदावन का एक अमाल है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि खुदावन ने अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसीलिए अब हमें भेड़ या बकरियां चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। यही वजह है कि हमें खुदावन को ज़्यादा हिसाब देना पड़ेगा कि हम अपनी ज़िंदगियां किस तरह से जीते हैं और किस तरह से हम खुदावन के साथ चलते हैं। हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि खुदावन यीशु ने सलीब पर हम सब के लिए कितना दुख सहा सिर्फ इसलिए कि हम खुदा तक पहुंच सकें। और अगर फिर भी हम गुनाह करते रहते हैं तो हम खुदावन यीशु के खून को संजीदगी से नहीं ले रहे, हम खुदावन यीशु के खून को बहुत हल्का ले रहे हैं और हम खुदावन यीशु के खून को नापाक जान रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि खुदावन यीशु के खून की वजह से ही हमें हमारे तमाम गुनाहों से माफ़ी मिली है और माफ़ी मिलती है। अगर हम गुनाह करते रहते हैं तो हम रूहुल कुदस को रंजीदा करते हैं, अगर हम गुनाह करते रहते हैं तो हम रूहुल कुदस की इज्जत नहीं करते, अगर हम गुनाह करते रहते हैं तो हम रूहुल कुदस की बेइज्जती करते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा सज़ा मिलनी भी चाहिए क्योंकि हम खुदा को जानते हैं, खुदा के फजल को जानते हैं, खुदा के कलाम को जानते हैं और अगर फिर भी हम गुनाह करते रहते हैं तो हमें उन लोगों से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए जो लोग खुदा को नहीं जानते। आसमान यानी कि फरदोस असली है जो कि खुदावन ने उन लोगों के लिए बनाया जो खुदा से डरते हैं और खुदा की राहों पर चलते हैं। आसमान यानी कि फरदोस असल है, उसी तरह दोजक भी असल है। खुदावन ने दोजक शैतान और उन फरिश्तों के लिए बनाया जिन्होंने खुदावन की नाफरमानी की, यानी कि जिन्होंने खुदावन की नाफरमा बरदारी की। हम देखेंगे यहूदा उसका 5 बाब, यहूदा उसका 1 बाब 5 और 6 आयत, यहूदा उसका 1 बाब 5 और 6 आयत, यहूदा उसका 1 बाब 5 और 6 आयत में लिखा है, बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावन ने एक उम्मत को मुल्के मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए और जिन फरिश्तों ने अपनी हकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खाली के मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दामी कैद में तारीखी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। आमीन। तो वो लोग जो जान बुझ कर गुनाह करते रहते हैं, खुदा की कलाम की नाफरमानी करते हैं, उनका मुस्तकबिल भी इन फरिश्तों की मानिंद ही होगा जिन्होंने खुदावन की नाफरमानी की। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे 1 पत्रस उसका 4:17, 1 पत्रस उसका 4:17 में लिखा है, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। आमीन। हम सबको खुदावन के तख्ते अदालत के सामने खड़ा होना होगा और खुदावन अपनी अदालत अपने घर से ही शुरू करेंगे, यानी कि अपनी कलीसिया से शुरू करेंगे। खुदावन अपनी अदालत पहले अपने बच्चों से शुरू करेंगे, खुदावन पहले अपने बच्चों को अदालत में खड़ा करेंगे और वो लोग जो फरमा बरदार होंगे उन्हें उनकी फरमा बरदारी का बदला मिलेगा और वो लोग जो नाफरमा बरदार होंगे उन्हें सज़ा मिलेगी। तो ये पैगाम हम सब के लिए एक वार्निंग मैसेज है। खुदावन हम सबको पुकार रहे हैं, हमें ज़रूरत है कि हम खुदा की पुकार को सुने। खुदावन चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों पर निगाह डालें कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, हम किस तरह से खुदा के लिए जी रहे हैं, हम किस तरह से खुदा के साथ चल रहे हैं। खुदावन चाहते हैं कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें। खुदावन चाहते हैं कि हम खुदावन के खून को, खुदावन यीशु के खून को संजीदगी से लें। खुदावन चाहते हैं कि हम खुदावन यीशु के खून को हल्का ना लें। खुदावन हमारे साथ बहुत सब्र और तहमल से पेश आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सब की नौबत तौबा तक पहुँचे। वो चाहते हैं कि हम सब अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और खुदावन के पास फिर लौट आएं। हम खुदा के कलाम में से आखिरी हवाला पढ़ेंगे और वो है तीतुस उसका दूसरा बाब 11 आयत से 14 आयत तक। तीतुस उसका दूसरा बाब 11 आयत से 14 आयत तक। और खुदावन के मुकद्दस कलाम में लिखा है तीतुस उसका दूसरा बाब 11 से 14 आयत तक। और खुदावन के मुकद्दस कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दूनी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारे और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुज़ुर्ग खुदा और मुंजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी ख़ास ममलिकत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। आमीन। यही है हमारा आज का पैगाम। खुदावन के साथ ईमानदारी और वफादारी से चलते रहना। आए हम सब मिलकर आज के पैगाम के लिए दुआ करेंगे। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के आपके कलाम के लिए जो आपने हमें दिया है। खुदावन, आप चाहते हैं कि हम आपके रूहुल कुदुस को रंजीदा ना करें, हम आपके रूह की बेइज्जती ना करें, हम खुदावन यीशु को पामाल ना करें। खुदावन, आप चाहते हैं कि हम सब तौबा करें और आपके फर्माबरदार बच्चे बने। खुदावन, आप हमारी मदद करिए कि आज के पैगाम को सुनने के बाद हम आज के इस पैगाम पर अमल करें ताकि हमारी ज़िंदगियों में ढेर सारी बरकत आए। हमारी मदद करिए खुदावन कि हम आपसे मोहब्बत करें, और हम आपसे मोहब्बत करते हैं ये हम अपने अमाल से आपको दिखाएं। हमारा ईमान बढ़ाइए, हमें शिफा बख्शिए, हमारे साथ होइए और हमें अपनी बादशाही के लिए इस्तेमाल करिए। खुदावन, हम ये छोटी सी दुआ अपने प्यारे मुनजी खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।